शांति लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रतिभाओं के धनी आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही या यूं कहें 36 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्तमान में आप जीबी पंत हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं और साथ साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंसेस और इसके अलावा पार्लियामेंट हेल्थ एनेक्स में कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत ही सुंदर आपका मेडिकल करियर रहा है। 18 जितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं और 5 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं और मेडिकल फील्ड में दिनों दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कई सारे अवार्ड्स भी आपने प्राप्त किए हैं, जिसमें से एक है एक्सलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 और भी कई अवार्ड्स हैं। और 1500 से ज्यादा आपके पब्लिकेशंस भी हैं और इसके अलावा 1200 से अधिक आप लेक्चर्स दे चुके हैं। अपने लेक्चर्स में स्पिरिचुअलिटी को जरूर कवर करते हैं आप, या यूं कहें कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस का ओरिएंटेशन देते हैं और इसके साथ साथ आप ट्रैवलिंग भी करते हैं देश और विदेश में। हमारे पास जो मुख्य रूप से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो योगा डे होते हैं उसमें आप प्रोमिनेंट स्पीकर होते हैं और कई रिसर्च वर्क में भी आप शामिल हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं आप रिसर्च ट्रायल्स जो ग्लोबल लेवल पर कंडक्ट करते हैं उसकी, और साथ ही साथ जेनेटिक रिसर्च में भी आप इन्वॉल्व हैं। बहुत लंबी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की, लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इतनी उपलब्धियाँ और बाबा जीवन में साथ साथ है तो आप उसके साथ साथ क्या है, बैलेंस और ब्लेसिंग्स और ब्लिसफुल लाइफ के भी धनी हैं। तो अपने ही लाइफ के अनुभव हम सबके सामने व्यक्त करेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। कल शाम की बात है, जब मैं घर से जा रहा था तो हमारे एक मित्र ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा पिकनिक? तो मैंने कहा हमारे लिए जो योग की भट्टियाँ होती हैं वो पिकनिक होती है, क्योंकि वो ऐसी पिकनिक है जहाँ तन और मन का अवलोकन और आत्मसात करने का हमको बहुत अच्छा मौका मिलता है। और पिकनिक कभी भी भारी नहीं करती, पिकनिक हमेशा हल्का करती है। तो आप सब 2 दिन से 3 दिन से इस तपस्या भूमि पर हैं, तो आप सब हल्के हुए हैं या ज्ञान सुन के भारी हो गए? सच में हल्के हो गए या भारी हैं, पक्का बताइए। बिल्कुल हल्के हो गए। किसी को ये चिंता तो नहीं होगा कि अरे ये मैं कैसे करूंगा? कभी ज्ञान की बहुत गहराई हम सुन लेते हैं तो लगता है ये तो मुझसे नहीं हुआ है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर बात हमारे सामने रखी है। बाबा ने कहा कि तुम सहज राजयोगी जीवन वाले हो। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुश्किल राजयोगी जीवन वाले हो या हठ योगी हो। और सबसे पहले प्यारे बाबा आकर हमको समय की, गणतव्य की, साधन की, ईंधन की पहचान दे देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी मंजिल क्या है ये भी तुम्हें मैं बता देता हूं, समय क्या चल रहा है ये भी मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारा साधन क्या है, चलना है, दौड़ना है या उड़ना है ये भी बाबा ने हमको बताया है, और ईंधन क्या है, ज्ञान और योग का ईंधन है उसके द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और ना केवल ये, हम उड़ने की कोशिश करते हैं तो उस उड़ने में भी जो हमारा इंजन है वो एक नहीं डबल इंजन लगा हुआ है, वो है बाबा स्वयं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, डबल इंजन हमें लगा हुआ है, वो उड़ाकर भी हमको ले जाता है। पर बाबा कहते हैं बच्चे बैठो तो सही, कम से कम अगर बैठोगे ही नहीं तो उड़ाऊंगा कैसे मैं। तो हमें केवल बैठना है उस सुंदर स्थिति, उस सुंदर आसन पर। लेकिन इसमें भी अक्सर देखा गया है कि कभी कभी हमारी स्मृतियां चेंज हो जाती हैं, और जब भी हमारी स्मृति चेंज होती है तो हमारी स्थिति पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है, पूरी जिंदगी का, पूरी लाइफ का, चाहे ब्राह्मण हो चाहे लौकिक हो, उसका आधार, हमारे जीवन का जो आधार, वो है हमारी स्मृति। एक बारी की बात है कि एक बहुत धनढ्य व्यक्ति था, उसके पास खूब धन था, लेकिन उसकी एक इच्छा रहती थी कि जब मैं मरूं तो परमात्मा का नाम मेरे मुख पर हो। तो उसने अपने घर का नाम गोकुल धाम रख दिया, अपने तीन बच्चे थे, तीन बच्चों में से एक का नाम राम रख दिया, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया, तीसरे का नाम शिव रख दिया, और अपनी वाइफ का नाम भी बदल के दुर्गा रख दिया। तो जहां पर भी जाता मुख से वही बोलता रहता, तो उसे लगता कि वाह, भगवान का मुख नाम मेरे मुख से निकल रहा है, अब तो भगवान मेरे, देवता मेरे कितने समीप हैं। जब अंतिम समय आया तो अपनी शैया पर पड़ा हुआ था, तो लेटे लेटे उसने कहा अपने गोकुल धाम में कि मुझे गोकुल धाम में अपनी खटिया पर लेटा दो, तो वो लेटा दिया। उसे लगा वाह, भगवान का नाम निकल रहा है, उसके धाम में मैं बैठा हुआ हूं। उसने कहा कि राम कहाँ है, तो राम ने कहा पिताजी मैं तो यहां पर हूं। फिर उसने कहा अच्छा तुम यहां पर हो तो कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण ने कहा कि कृष्ण पिताजी मैं भी आपके बाईं तरफ खड़ा हूं। तो उसने कहा शिव कहाँ है, तो शिव ने कहा कि पिताजी मैं भी आपकी बाईं तरफ खड़ा हुआ हूं। तो उसने कहा अगर तुम तीनों यहां पर हो तो दुकान पर कौन है, और जैसे ही उसने कहा उसके प्राण जो है वो उड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो याद करने की उसने कोशिश की, करते करते अंतिम समय उसको क्या ध्यान आया, उसको अपनी दुकान ध्यान में आई। तो स्मृति चेंज हुई तो स्थिति चेंज हुई, और जो स्थिति चेंज हुई वो हमारे जीवन की स्थिरता को भी हिला देती है। तो तीन शब्दों का खेल है हमारा जीवन, स्मृति, स्मृति के आधार से हमारी स्थिति, और स्थिति के आधार से हमारे जीवन की स्थिरता, और ज्ञान का पूरा एसेंस और कुछ है ही नहीं, केवल इन तीनों बातों का खेल है। जैसी स्मृति है वैसी हमारी स्थिति है, और जैसी हमारी स्थिति है वैसी हमारे जीवन के अंदर स्थिरता और बैलेंस आ जाता है। इसी मधुबन के प्रांगण की सुंदर कहानी है, ब्रह्मा बाबा की 1960s की, 63 की कहानी है, पीछे की ही बात है, और सच्ची घटना है कि बाबा बच्चों के साथ गोबर के उपले बना रहे थे, और सभी बहनें दौड़कर ब्रह्मा बाबा के पास आईं, और उन्होंने बोला कि बाबा दिल्ली से जज आया है बहुत बड़ा, आपसे मिलना चाहता है। वो जज इसलिए देखने आया था कि इनका बाबा करता क्या है, जरा देखूं, इतने लोगों को भटका रखा है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का बच्चा आया उसे ले आओ। तो उन्होंने कहा बाबा आप अपने कमरे में तो चलिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बच्चों के साथ यहीं पर गोबर के उपले बना रहा हूं, यहीं पर ले आओ तुम उसे। तो बच्चियां हैरान हुई, और वो जज को यहां पर लाया गया, वो अपने बड़े आराम से चलता फिरता आया, और वहां पर बाबा बड़े प्यार से गोबर के उपले बना रहे थे बड़े आराम से। अब वो जज वहां पर बाबा के सामने आया तो उसे ब्रह्मा बाबा तो दिखाई नहीं दिए, उसे वहां पर देखा कि कृष्ण जो है वो बॉल के साथ खेल रहा है, और उनको देखा जाए उसकी आंखों से आंसू निकले जाए, वो कभी बाबा को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, और बाबा उसको प्यार से अपने गले लगा करके आओ बच्चे आओ, अपने पिता के घर आए हो, आओ बच्चे आओ, सब कुछ भूल भाल गया। दो दिन यहां पर रहा, पूरा ज्ञान उसने यहां से सुना, और जब जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, बाबा का बच्चा बना। तो बच्चों ने पूछा कि बाबा आपने ऐसा कैसे किया, तो बाबा ने कहा बच्चे कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन किस स्मृति में रहते हुए बाबा वो कार्य कर रहा है, वो स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि साधारण कार्य भी असाधारण दिखता है। और ये कोई ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, ये केवल हमारे अपने मन की बात है, हम सबके मन की बात है। आप सब यहां पर बैठे हो ना, आप सबके मन की बात है, सुनना नहीं है, केवल एक चीज चेक करो कि मेरे जीवन के अंदर मेरी स्मृति कितनी श्रेष्ठ है। और जब स्मृति हमारी बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है, बड़ी वंडरफुल हो जाती है, आप देखो ना, अगर खुशी की फीलिंग है, आनंद की फीलिंग है, तो क्या होगा, आप खग्गियां मारोगे, आप उछलोगे, आपका पांव जमीन पर नहीं पड़ेगा। और यही आधार बनता है हमारी ब्लिसफुल लाइफ का, जो सबसे अल्टीमेट अचीवमेंट हमारा गोल है, ये ब्लिसफुल लाइफ हमें सतयुग में मिलेगी वो अलग है। जब सतयुग आएगा 10 साल 20 साल 40 साल जब भी आए वो ड्रामा अनुसार आएगा, लेकिन उस ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव मुझे इस समय आज इस ब्राह्मण लाइफ में करना है। सभी करना चाहते हैं ना, है ना। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का अर्थ है कि हम इस समय ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करें। और ब्लिसफुल लाइफ जिसकी होगी उसके जीवन में दो पहचान होंगी, उनको सदा ध्यान रखना। राजू भाई ने उसको बताया, उसको मैं और स्पष्ट करके आपको बताता हूं कि उसका जीवन सदा खुशियों से परिपूर्ण होगा। हर बात में, चेहरे से, चलन से, कभी कभी खुशी गायब नहीं होगी लेकिन खुशी स्थायी और सदा होगी। और दूसरा, जिसके जीवन में ब्लिस, जिसको आनंद, जिसको हैप्पीनेस बियॉन्ड सेंसेस कहते हैं, उसके जीवन में हल्कापन होगा। केवल दो ही क्वालिटीज हैं ब्लिसफुल लाइफ की, खुशी और हल्कापन। खुशी कब? जब प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। स्थूल चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से असीम प्राप्ति, एक आनंद, आनंद अलग प्रकार का है। प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संतुष्ट आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, ऐसी श्रेष्ठ जब जीवन है वो ब्लिसफुल लाइफ है। और हल्कापन कब? जब व्यर्थ से मुक्त होगा। हल्का कौन रह सकता है? हल्का उड़ कौन सकता है? जिसके पास कोई नीचे खींचने वाली कोई व्यर्थ बात, कोई चीज ना हो, वही हल्का रह सकता है। तो ये दो बातें जिसके जीवन में है उसकी लाइफ हमेशा ब्लिसफुल है। अब अगर हम देखें तो ब्राह्मण लाइफ में इन्हीं दो बातों में चैलेंज आ जाता है। कहते भाई जी कोशिश तो करते हैं, हाँ कभी कभी लगता है, और ऐसा नहीं है आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब उस जीवन में चल रहे हैं। कभी कभी कुछ सूक्ष्म स्थूल परिस्थितियां, स्वयं के मन के संकल्पों की, लोगों के व्यवहार की, वो सब बातें आती हैं। लेकिन उन सब बातों को आते हुए भी मेरी खुशी और हल्कापन कितना रहता है, इसका रोज मार्किंग और चेकिंग, सूक्ष्म अटेंशन रखना, ये बहुत बहुत हमारे लिए आवश्यक है। अब ब्लिसफुल लाइफ का आधार क्या है? ब्लिसफुल लाइफ का जो आधार है वो है वो आत्मा जिसने जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी की है, दुआओं का खजाना इकट्ठा किया है। ब्लिस किसके पास होगा? आनंद किसके पास होगा? जिसको बददुआएं मिल ही नहीं रही, जिसको दुआएं मिल रही हैं, जिसके पास कोई भी व्यर्थ है ही नहीं। हर आत्मा स्वयं भी दुआएं दे रहा है, ब्राह्मण परिवार भी दुआएं दे रहा है, परमात्मा भी दुआएं दे रहा है। जिन आत्माओं से वो मिलता है वो भी उसे दिल से दुआएं दे रही हैं, दिल से उसे स्वीकार रही हैं। तो जिस आत्मा के प्रति सबके दिल से दुआएं निकलती हैं उसके जीवन में कोई नेगेटिविटी होगी? बताइए, होगी या नहीं होगी? हाँ होगी या नहीं होगी? अगर दुआएं कैसे कैसे चल रहे हैं, अगर आप किसी से पूछो कैसे चल रहे हैं, वो क्या बोलेगा? दुआएं हैं आपकी। कभी ये बोलेगा कि आपका कोई भाई आपका गिफ्ट से चल रहे हैं, आपकी कोई बात से चल रहे हैं? कहते हैं आपकी दुआओं से चल रहे हैं, ये दुआओं से चल रहे हैं। और हमारा जीवन कैसा है? हम परमात्मा की दुआओं से चल रहे हैं, ब्राह्मण परिवार की दुआओं से चल रहे हैं। और दुआएं कभी भी मांग के नहीं दी जाती। अगर हम कहें किसी के पास जाके कि आपकी दुआएं हमें दो बाबा, आप हमें दुआ दो, हमारे लिए दुआ करो, किसी दादियों के पास जाके ब्राह्मण परिवार से कहें कि आप हमारे लिए दुआ करो, वो दुआएं नहीं लगेंगी। दुआएं तब मिलती हैं जब हम किसी भी आत्मा को सुख देते हैं, उसको शांति देते हैं। जब भी आप किसी को संकल्पों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा सुख देंगे ना, तो वो आत्माएं दिल से आपको दुआएं देंगी, दिल से दुआएं देंगी। जब किसी के लिए परोपकार करेंगे, किसी का कल्याण करेंगे, तो वो आपको दुआएं देंगी। तो दुआएं कभी भी मांगी नहीं जाती, दुआएं स्वतः ही हमको मिल जाती हैं। तो चेक करना है कि हमारे जीवन में दुआओं का खजाना हमने कितना इकट्ठा किया है। 1997 नवंबर, बाबा की मुरली, बाबा ने फोर्थ पैराग्राफ, थर्ड पेज पे बाबा ने बड़ा सुंदर बोला। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर सर्वशक्ति संपन्न नहीं बन सकते कोई बात नहीं, अगर गुणों को धारण करने में मुश्किल है तो भी कोई बात नहीं, अगर योग नहीं लगता तो भी कोई बात नहीं। बाबा कहता है केवल एक काम करो, केवल एक काम करो कि हर आत्मा को दुआ दो, हर आत्मा से दुआ लेते चले जाओ, स्वतः ही तुम उड़ने लगोगे, पुरुषार्थ तुम्हारा अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जो आत्मा, जो ब्राह्मण हर एक को दुआएं देता है, दुआएं लेता है, वो व्यर्थ से मुक्त होता चला जाता है, हल्का होता चला जाता है, उसका योग स्वतः ही लग जाता है, क्योंकि परमात्मा से वो ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे दे रहा है। तो दुआओं का खजाना ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में जमा करना बहुत 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 आवश्यक है। बाबा ने 1986 दिसंबर में बहुत सुंदर कहा था। किसी ने कहा कि बाबा आपसे तो बहुत प्यार है, बहुत ढेर 100% प्यार है, लेकिन क्या है कि परिवार में या अपने लौकिक जीवन में आते हुए हम हर एक से दुआएं नहीं दे पाते, उसको दिल से दुआ नहीं निकलती उसके लिए, या हमें लगता है कि हमारा इन आत्माओं से या किसी व्यक्ति से या किस आत्मा के प्रति हमारा प्यार नहीं निकलता, अंदर से आत्मिक वो नहीं निकलता। तो बाबा ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण परिवार के प्रति भी स्नेह और दुआएं नहीं निकलती, तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों का प्यार भी बाबा को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अकेले राज करोगे क्या, तुम्हारे साथ तो पूरी डायनेस्टी आएगी ना। तो जब रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर स्वतः ही अपने ऊपर नहीं है, तो बाबा कहता है फिर बाबा ऐसे प्यार का क्या करेगा। इसलिए तीनों प्रकार की दुआएं, तीनों प्रकार की प्राप्तियां बहुत आवश्यक हैं। स्वयं को भी स्वयं से दुआएं देना, ब्राह्मण परिवार से भी दुआएं देना और लेना, और बाबा की दुआएं स्वतः लेना, और ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो ब्लिसफुल लाइफ का आधार है ब्लेसिंग्स, यानी दुआओं का खजाना जमा करना। और ब्लेसिंग्स का आधार क्या है, ब्लेसिंग्स किन को मिलेंगी, ब्लेसिंग्स किन को मिलेंगी, जब हमारे जीवन में बैलेंस होगा। अगर हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है, संयम नहीं है, समन्वयता नहीं है, आधार नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की फीलिंग है, भागने की फीलिंग है, योगी जीवन को भी हमने एक रेस बनाकर रखा हुआ है, आनंद से दूर जाते चले जा रहे हैं, उसको भी हमने होड़ में परिवर्तित किया है, तो बैलेंस चला जाएगा। तो बाबा कहता है बैलेंस गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हिल जाएगा, ना दुआएं दे पाएंगे, ना दुआएं ले पाएंगे, ना ब्लिस का अनुभव कर पाएंगे। तो ये तीनों जो टाइटल है ना, ये तीनों एक ट्रायंगल की तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, बैलेंस, बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स के द्वारा स्वतः ही ब्लिसफुल लाइफ। बैलेंस से हमारे जीवन का आरंभ होता है ना। और बैलेंस के बड़े मायने हैं। एक बैलेंस होता है ब्राह्मण लाइफ में, तीन प्रकार के बैलेंस हैं, जानते हैं तीन प्रकार के बैलेंस, सुना है कभी ब्राह्मण लाइफ में तीन प्रकार के बैलेंस? बैलेंस जो है वो तीन मायनों के रूप से अपने जीवन में देखा जा सकता है। एक है बैलेंस लकड़ी का बैलेंस, कई ब्राह्मण होते हैं जो लकड़ी का बैलेंस यूज करते हैं। दूसरा जो होता है बैलेंस, वो होता है चांदी का बैलेंस, कई ब्राह्मणों के जीवन के अंदर जो बैलेंस होता है वो चांदी का बैलेंस होता है, और कई ब्राह्मण जीवनों के अंदर जो होता है वो है हीरे सोने का बैलेंस। अब हमें चेक करना है कि हमारा बैलेंस कौन सा है, इनको स्पष्ट करते हैं, चेक करना अपने आप को, एंजॉय करना इसको, बड़ा मजा आएगा आपको। तो पहला है लकड़ी का बैलेंस। अगर लकड़ी का बैलेंस हम अपने जीवन में लें, लकड़ी के बैलेंस को देखें, तो जब लकड़ी को तोलते हैं तो एक तरफ अगर 100 किलो डाली जाए, दूसरी तरफ अगर 110 किलो भी हो जाए, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई ज्यादा कहेगा कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, आसपास किया, तो एक्यूरेसी उसमें जरूरत नहीं है, उसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है। तो एक वो बैलेंस भी होता है, कई लोग उसी प्रकार से जीवन को जीते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। वो तराजू बहुत बड़ा होता है, उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं की जाती, तो एक इस प्रकार का बैलेंस हम लोग अपने जीवन में लेके चलते हैं। दूसरा बैलेंस हमारे जीवन में होता है वो है चांदी का बैलेंस। चांदी का बैलेंस जब आप शॉप पर जाएंगे तो वो बाहर रखा होता है, उसमें भी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है ना। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार की, स्वयं के जीवन की बैलेंस आती है, तो वो बैलेंस जो है वो है हीरे तुल्य बैलेंस। जब आप किसी कुशल, कुशाग्र, श्रेष्ठ सुनार के पास जाएंगे ना, तो जो सोना और हीरा तोलने का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को भी तिजोरी के अंदर बड़ी डेलिकेटली रखा जाता है, उसको एरर फ्री बनाया जाता है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट रखा जाता है, उसके अंदर समन्वयता बहुत होती है, उसके अंदर समानता बहुत होती है, उसके अंदर जरा भी अगर एक्यूरेसी समाप्त हुई तो क्या होगा, बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी हमें बैलेंस चेक करना है कि कौन सा बैलेंस एरर फ्री, श्रेष्ठ, एक्यूरेट, बिल्कुल वो बैलेंस हम लोग लेकर चलते हैं। धुरी पता है कौन सी है बैलेंस की? हमारी धुरी है हमारी मर्यादाओं की धुरी, जो बहुत सुंदर रूप से अभी आपके समक्ष हमारे प्यारे राजू भाई जी ने आत्मसात की विचार रखा। तो जब इस प्रकार का बैलेंस हम लोग अपने जीवन में रखते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल एक्यूरेट चलता रहता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ 5-6 प्रकार के बैलेंस रखूंगा और उनको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे। और अगर इन 6-5-6 बातों का बैलेंस हमने अपने जीवन में रखा तो ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जीवन में चलना, वो मुश्किल तो आप छोड़ ही दीजिए, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप उड़ रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। रोज कार्य करेंगे, बड़ा सुकून आएगा, बड़ा आनंद आएगा। बचपन से ही जब हम इस मधुबन प्रांगण में आए थे, हमें ध्यान है कि हम लोग 5-6 साल के बच्चे होते थे, छोटे छोटे, तब इतनी बड़ी वो नहीं होती थी। और पूरा मधुबन प्रांगण के अंदर ही करीब 50-100 लोग होते थे, हमारे बाबा के बच्चे होते थे, और हम छोटे होते थे, इधर उधर भाग जाते थे। कभी कोर्स करने का मौका नहीं मिला, बाबा ने वरदान दिया एडवांस पार्टी का, और बहुत सुंदर रूप से दादियों की सबकी पालना मिली। लेकिन उस पालना के अंदर बहुत सुंदर बैलेंस जो हमको सबसे पहले मिला वो है ज्ञान का और कर्म का बैलेंस। सबसे पहले बाबा ने बहुत सुंदर, बाबा ने कहा कि बच्चे ज्ञान दे रहा हूं मैं, रोज हम ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान और कर्म जब बैलेंस और समन्वयता में नहीं होते हैं तो जीवन कभी भी मर्यादित, जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बहुत सुंदर है, इससे आपको इस बात के स्पष्टता आएगी कि एक बारी एक जंगल के अंदर दो दोस्त जा रहे थे, एक अंधा था एक लंगड़ा था। जाते जाते वहां पर आग बहुत तेज लग गई, तो अंधे ने देखा कि आग लगी है, तो वो बहुत तेज, अंधे को पता लगा आग लगी तो बहुत तेज वो भागने लगा, उसने आग ना देखा था बस वो भागने लगा। तो उसका मित्र लंगड़ा जो है बोला कि अरे रुक जा, तू तो आग की तरफ ही भाग रहा है, लेकिन वो नहीं माना उसकी बात, वो भागता रहा और झुलस कर मर गया। उधर लंगड़ा था, उसे पता था कि आग किस तरफ लगी हुई है और उसे ये भी पता था कि किस तरफ भागना है, तो उसने सही तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो लंगड़ा था तो वो भी नहीं पहुंच पाया और वो भी झुलस कर मर गया। अगर वो अंधा उस लंगड़े की बात को सुन लेता तो अंधा व्यक्ति उस लंगड़े को अपने ऊपर बिठा लेता और लंगड़ा व्यक्ति उसको बताता कि इस तरफ हमें चलना है, तो दोनों बच जाते हैं। तो अंधा व्यक्ति जो था उसने अपना कर्म किया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि क्या उसे कर्म करना है। बिना ज्ञान के उसने कर्म किया, इसलिए उसने विनाश को प्राप्त किया। दूसरी तरफ जो लंगड़ा व्यक्ति था उसे ज्ञान था, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो कर्म यथार्थ नहीं कर पाया। तो एक क्रियावान था लेकिन ज्ञानवान नहीं, और दूसरा ज्ञानवान था लेकिन क्रियावान नहीं। तब जब ज्ञान और क्रिया दोनों में समन्वयता नहीं थी तो वो व्यक्ति विनाश को पाता है। और यही आज हमारे जीवन के अंदर मानव की हालत है, चाहे ब्राह्मण लाइफ हो चाहे बाहर हो। मानव को ज्ञान है, सब ज्ञानित्व आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं, रोज ज्ञान सुनेंगे, मुरलियां सुनेंगे, 10-10 क्लासेस भी हम लोग सुन लेंगे, पॉइंट्स भी हम लोग नोट कर लेंगे, लेकिन ज्ञान का श्रवण करना, ध्यान से समझना इस बात को, ज्ञान का श्रवण करना, उस बात को सुनकर नोट करना, वो पहली स्टेज है। उसके बाद उस ज्ञान का मंथन करना, मनन करना, उससे मक्खन निकालना, वो हमारा इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। और मंथन और मनन और मंथन करके उसको मग्न अवस्था में अपने अंदर समा लेना, अपने स्वरूप के अंदर समा लेना, वो है उसको अपने जीवन के अंदर कर्मों में लाना। तो जब ज्ञान और कर्म दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में नहीं होता है तो सब कुछ होते हुए भी हम खुशी, ब्लेसिंग्स और आनंद का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ज्ञान हम सबको मिलता है, बाबा का वंडरफुल ज्ञान मिलता है ना। तो बचपन से ही जब बाबा हमको कहता है कि हमें मर्यादाएं देता है, बच्चे 4 धारणाएं तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग के अंदर उठो, मॉर्निंग के अंदर उठ के अमृत वेले बाबा के साथ प्यार से योग लगाओ, अलग अलग संबंधों की अनुभव करो, बाबा ने ज्ञान दिया उसको कर्म में लाकर अनुभवी युक्त बनकर अलग अलग संबंधों का फीलिंग बाबा के साथ लाना, यह है उन दोनों की समन्वयता। फिर बाबा कहता है ब्रह्मचारी बनो, बाबा ने कितनी सारी जो ब्रह्मा बाबा की जो मर्यादाएं थी, जो दिनचर्या थी, वही हमारे जीवन की दिनचर्या है, ये ज्ञान बाबा ने दिया, उन दिनचर्या को अपने जीवन में लाना, यह है उसको कर्म में लाना, उसका स्वरूप बनना। फिर बाबा ने ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सुंदर रूप से स्पर्श किया, केवल स्थूल पवित्रता नहीं लेकिन मन वचन कर्म के अंदर भी श्रेष्ठ पवित्रता, ये भी ज्ञान हमको दिया। उसको आत्मसात करते हुए अपने कर्म में लाना, अपने जीवन में लाना, यह दोनों का बैलेंस रखना। तीसरा बाबा ने बोला ब्रह्मा भोजन, चार बातें, यही हमारे जीवन का सुंदर आधार है। तो ज्ञान युक्त कर्म जब हम करते हैं ये है जीवन के अंदर यथार्थ बैलेंस का अनुभव करना, है ना। तो पहली मुख्य धारणा बचपन से ही जब हम यहां पर आए तो हमें ध्यान है कि 1985 18 जुलाई की बात है, तब से लेकर लौकिक बहन भी बैठी हैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा था कि भाई मम्मी पापा आप तो मुरली पढ़ते हो तो मुरली क्यों पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा मुरली पढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोला कि भाई आप लोग मुरली पढ़ते हो तो स्वर्ग में जाओगे तो आप हमको नर्क में छोड़ के जाओगे, हमको भी मुरली सुनाया करो। तो उस दिन से लेके आज दिन 11 मई 2022 हमने एक भी दिन कभी भी बाबा की मुरली अपने जीवन में मिस नहीं किया। ऐसा हुआ ही नहीं है कभी भी कि मुरली कभी भी हमने मिस की हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी एक्यूरेसी अपने जीवन में रखना, कर्म कर रहे हैं, कभी कभी पढ़ाई होती थी, कभी कभी प्रेशर्स होते थे, हर जगह कॉलेज का है वो है, लेकिन फादर लगातार मुरली को लेकर बैठे रहते थे कि कभी भी इनको आधे घंटे का समय मिले तो मुरली कंप्लीट सुना के इनको पॉइंट्स बाबा का जरूर हम सुनाएं। तो जब हम ज्ञान बाबा को अपने जीवन में आगे रखते हैं तो स्वतः ही बाबा हमारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, है ना। इसी प्रकार कभी कभी जब जा रहे हैं, हॉस्पिटल जाते थे, कर्म पर जाते थे, कभी भी एग्जाम पर जाते थे, तो हमेशा बाबा के कमरे में प्यार से होकर जाना, बाबा को अपने साथ लेकर जाना। ये छोटी छोटी बाबा के साथ जो संबंध, जो प्यार का संबंध हम वन टू वन जिसको हम कहते हैं अफेक्शन हम डेवलप करते हैं, तो वो रिलेशन डेवलप करते हैं, तो बाबा सदा आपको अपनी प्रेजेंस का, अपने सपोर्ट का, अपने बैकबोन होने का अनुभव बाबा हर कर्म के अंदर हर पल पर आपको अनुभव कराता है, हमेशा अनुभव कराता है। हम एग्जाम देने जाते थे, हमें टिपिकल जैसे बच्चे होते हैं, हम कहते थे मम्मी को कि भाई याद नहीं है कुछ भी, बहुत मुश्किल है, इतनी पढ़ाई की है, इतना बड़ा कोर्स बुक है, लेकिन दिल से इतना प्यार था बाबा के लिए, बाबा के कमरे से जाते थे कि बाबा सब आपको देखना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमने पढ़ा है, लेकिन बाबा आप सदा बैठे हुए और वहां पर पेपर देने जा रहे हैं, बाबा के पास गए, बाबा को याद किया और ऐसा लगता था कि सब कुछ बाबा आपके लिए बनाकर बिल्कुल कस्टम मेड देकर आ रहा है, और आपका मन ऐसे खुल जाता था जैसे पैराशूट खुल जाता, आप केवल लिखते जा रहे हो, करते जा रहे हो और बाबा बिल्कुल प्रवाह की तरह सब करता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लव बाबा के साथ, प्यार बाबा के साथ कनेक्ट इतना था, संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त 100%। तो ज्ञान और कर्म का बैलेंस ये बहुत बहुत आवश्यक है, सबसे पहला मूल आधार। तो ज्ञान भी सुनना है और ज्ञान को कर्म में लाना बहुत बहुत आवश्यक है, है ना। तो अब से हम रोज जब भी हम मुरली सुनेंगे उस मुरली को सुनकर उसका चिंतन करो कि आज जैसे बाबा ने बोला, आज बाबा ने खुशी के पॉइंट्स दिए, तो खुशी किस किस आधार पर रह सकते हैं, मेरी खुशी का आधार क्या है, ऐसे बाबा के क्या क्या पॉइंट्स है, मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा मिला है, वो मुझे अपना बच्चा बनाता है, वो मुझे टीचर बन के पढ़ाता है, वो इस पुरानी दुनिया से मुझे नई दुनिया में ले जा रहा है, कितने सारे खुशी के पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। आप कम से कम बैठो तो एक बारी में 50 खुशी के पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। बाबा ने बोला निश्चय बुद्धि मेरे बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि है उनकी अवस्था निश्चिंत है, तो मैं क्या हर परिस्थिति के अंदर निश्चय बुद्धि हूं, जो निश्चय बुद्धि है उसकी अवस्था सदा योगी की तरह निश्चिंत और स्टेबल रहेगी। तो एक एक पॉइंट के ऊपर जब हम डीप डाइव करेंगे, जब उसके अंदर जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, अपने आप उस पर चिंतन करेंगे, केवल सुनना नहीं है, केवल चिंतन करेंगे, तो आप देखोगे अनुभवों की खान आपके मन से ही निकलेगी। ये है बैलेंस मेंटेन करना, उस ज्ञान को रियली अपने स्वरूप में लाना, और इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है कि हर आत्मा को हम नेचुरल रूप से दुआएं देते रहते हैं, नेचुरल रूप से हम उसको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। दूसरा बैलेंस जो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है वो है तपस्या और सेवा का बैलेंस, है ना। कभी कभी योग और सेवा इनके अंदर हमारे जीवन में समन्वयता नहीं आ पाती, कभी कभी इनका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। आज अगर हम देखेंगे तो सेवाएं भी हमारी एक माया जाल की तरह एक्सपैंड हो गई हैं। लेकिन अपने आप से एक चीज पूछना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है। 1996 की मुरली जरूर आप पढ़िएगा, अक्टूबर 24 की मुरली है, जहां तक मुझे ध्यान आता है बाबा ने सेवाओं के बारे में बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया। बाबा ने कहा बच्चे सेवाओं करते हो तो सेवाओं का चौपड़ा भी जरूर समझो, और बाबा ने उसमें कहा कि सेवा के महारथी बने हो या स्थिति के महारथी बने हो, सब अपने आप से पूछें क्या इंपॉर्टेंट है, सेवा के महारथी बनना अच्छा है या स्थिति के महारथी अच्छा बनना है, नेचुरल है। बाबा ने कहा कि वो सेवा जिसमें आपकी और अन्य आत्माओं की स्थिति खराब हो, उस सेवा के मार्क्स ना जुड़ते हैं ना उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बाबा ने यह भी कहा कि सेवाएं मुख की अगर 10 मार्क्स हैं तो कई लोग कहते हैं कि बाबा हमको चांस नहीं मिलता है, तो बाबा कहता है अगर आप मनसा सेवा करते हो, प्यार से बैठकर उस आत्मा को सहयोग देते हो, तो आपके भी 100 मार्क्स उसके अंदर जमा हो जाते हैं। 10 मार्क्स मुख की सेवा और 100 मार्क्स मन की सेवा। तो बाबा ने बहुत सुंदर वर्ड यूज किया था कि सेवाएं करते हो तो सेवाओं का चौपड़ा भी जरूर समझो, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेवाएं जरूर करनी है लेकिन सेवाएं करते करते मेरी स्थिति किस प्रकार की है। मुख की आवाज एक पर्टिकुलर लेवल ग्रुप तक जा सकती है, लेकिन जब मनोस्थिति हमारी, जब हमारी योगी अवस्था होगी, जब हमारा मन बहुत शांत होगा, शीतल होगा, तपस्वी मन होगा, मन बहुत पवित्र होगा, निश्चल होगा, मन के अंदर अन्य आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना होगी, मन के अंदर अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, भाव भावना और स्वभाव इन तीनों बातों की समन्वयता होगी, तो बाबा ने कहा उस सेवा के अंदर सफलता स्वतः ही समाई हुई है, उसके अंदर दुआएं स्वतः ही समाई हुई है। तो बाबा ने कहा पूछो अपने आप से कि जब सेवा करने जाते हो तो क्या योगी स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर हम लोग सेवा करने जाते हैं, प्यार से करने जाते हैं। और हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं, अपने जीवन के अनुभव से, कि कितने सारे सेशंस, लेकिन कई बारी कई प्रोग्राम्स करें और कई प्रोग्राम्स में अगर ये स्मृति आई कि बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा भाषण किया, कितना अच्छा भाषण देते हैं, जैसे ही ये भाव और भावना आई उस सेवा के अंदर जो सफलता होती है उसकी परसेंटेज एकदम कम आ जाती है। और जब से ये भावना हमने अपने जीवन में रखी कि बाबा के कमरे में गए, कभी भी जाओ ना तो प्यार से बाबा के कमरे में जाओ, ऐसा नहीं सोचो कि केवल लेक्चर देना ही सेवा है, ऐसा नहीं सोचो, लेकिन रोज दिनचर्या के अंदर बाबा के पास कमरे में जाओ कि बाबा ये तन ये मन ये धन आपका है, कहीं पर भी किसी आत्मा की सेवा करनी है ना तो इस तन मन को यूज करना, ये समर्पण है आपको, केवल कठपुतली बनकर बैठ जाओ और धागा किसको दे दो, बाबा को, तो दे लिख लो कि मैं परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ कठपुतली हूं। तो बाबा अपने आप आपको जैसे वो नचाता रहता है ना, बाबा एक्यूरेट रूप से आपको जहां पर भी कहेंगे वो आपको यूज करता रहेगा। और आजकल समय ऐसा है बाबा यूज कर रहा है, आप देखेंगे भी नहीं, आपको महसूस हो जाएगा कि ये हमारी शक्ति नहीं थी, ये परमात्मा की शक्ति थी जिसने इस प्रकार की एनर्जी को क्रिएट किया है, इस प्रकार की वाइब्रेशंस को क्रिएट किया है। तो तपस्या और सेवा दोनों के अंदर, तपस्या पहले, योग पहले, योग के अंदर वो स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है, और श्रेष्ठ स्थिति को बनाकर, श्रेष्ठ पावरफुल संकल्पों को बनाकर जब हम प्यार से सेवा में आते हैं, उतरते हैं, अवतरित होकर करते हैं कि बाबा ये समर्पण है आप इसको यूज करो, तो आप देखेंगे कितनी सफलता बाबा आपको यूज करेगा। हर जगह जहां पर भी जाएंगे, जिस भी कार्य में जाएंगे, जिस भी प्रकार का कार्य करेंगे, उसमें पद्मा पद्म गुणा सफलता समाई हुई हुई है। इसके अंदर, इसके अंदर एक बात का टेंशन रखना है, पता क्या टेंशन रखना है, वो केवल एक बात का टेंशन है, वो है सदा निमित्त और निर्माण भाव। बाबा कहता है मुझे बच्चों का सब कुछ स्वीकार है। इस बैलेंस में तपस्या और सेवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म बैलेंस है, जो सबसे बड़ी बाबा की शिक्षा है, वो है निमित्त और निर्माण भाव। बाबा कहता है मुझे बच्चों का सब कुछ स्वीकार है, मैं बच्चों की सब गलतियों को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे बच्चों का अभिमान स्वीकार्य नहीं है। वो बाबा किसी भी बच्चे का स्वीकार नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा बाबा। बाबा कहता है जहां मैं किया, तो बाबा ने कहा तुमने मैं कहा और मैं उड़ गया, मैं उड़ गया। बाबा कहता है करो बच्चे अपने आप करो, मैंने किया, मैं ऐसा हैंडल कर लूंगा, मैं ऐसा हैंडल कर लूंगी, मेरे से ये बेटर हो जाएगा। बाबा ने कहा जहां मैं किया बकरी की तरह, तो वहीं बकरी शहीद हो जाती है। और जहां कर्तापन का भान आता है, वहां सफलता धीरे 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 कम होती जाती है। बाबा बाबा आपने करा लिया, बाबा आप करा रहे हो, बाबा चला रहा है, चला रहा है। यहां पर कोई यज्ञ आपको दिखता है, कोई किसी को गवर्न करा रहा है? जहां जाएंगे वहां खुशी के चेहरे, सब ऑटोमेटिकली कार्य चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, सब अपना भाग्य बना रहे हैं, सब जगह खुशियां खुशियां हैं। भगवान चला रहा है, भगवान का कार्य कितना श्रेष्ठ रूप से करते चले जा रहा है ना। तो रोज अपने आप को निमित्त भाव से समझो, अपने आप को यूज करो कि बाबा आप चलाओ तो सही, आप यूज तो करो इसको। हम करते नहीं है, केवल हम ज्ञान सुनते रहेंगे, हम रोज करेंगे कि भाई आज इनकी क्लास बहुत अच्छी थी, उनकी क्लास बहुत अच्छी थी। वो तो है, हमने 10, 20, 40 क्लास सुन ली, लेकिन हमारी वो स्थिति कब होगी कि जब हमारा चेहरा, चलन और स्वरूप ही दूसरी आत्माओं का परिवर्तन करने लगेगा? ये कब तक क्लासेस, कब तक रोज भट्टियां? क्या जीवन की योग भट्टी हम रोज नहीं रख सकते? क्या जीवन के श्रेष्ठ संकल्पों के अंदर हम रोज अपने आप को नहीं तपा सकते? क्या हमारा जीवन ही इतना श्रेष्ठ और पवित्र नहीं बन सकता कि हमारे चेहरे और चलन के द्वारा ही दूसरी आत्माओं को कितनी प्राप्ति हो जाए? सोचो, आप एक एक आत्मा सोचो कि आप जहां जा रहे हो वहां आत्माएं कह रहे हैं कि इनके अंदर कितनी रूहानियत है, इनके अंदर कितना रुहाब है, इनकी पवित्रता की शक्ति हमको खींचती है। आपको क्या प्राप्त हुआ है? आपका चेहरा इतना खुशी शांत क्यों है? आपके चेहरे पर इतनी विनम्रता, इतनी शीतलता क्यों है? ये सेवा है। इस सेवा के मार्क्स उस स्थूल वाचा के मार्क्स से 100 गुना ज्यादा है। उस मुरली के अंदर बाबा ने क्लियर बोला, चेहरे और चलन से सेवा कर रहे हैं आप, ऐसे स्वरूप, ऐसी रॉयल्टी के अंदर हम लोग चलें। ये सेवा का स्वरूप हमको बनाना है। केवल सुना, केवल 10 पॉइंट्स हमने नोट किए, 15 बातें हमने नोट की और परिवर्तन करके हम चल दिए, फिर अगली बार हमने एक और क्लास सुनी, उन्हीं पॉइंट्स का एक डिफरेंट वर्जन सुना, परिवर्तन कहां है? परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसके लिए सदा बाबा के साथ अपने आप को कंबाइंड रखो, बाबा को सदा जुड़, जैसे होता है ना फेविकॉल का जोड़। आजकल एक ऐड बड़ा मजेदार आता है, फेविकॉल का जोड़ ऐसा लगे जो कोई तोड़ ना पाए। ऐसे बाबा के साथ ऐसे जुड़ जाओ जो कभी भी कोई तोड़ ना पाए, है ना। ऐसे जुड़ जाओ मॉर्निंग के अंदर, प्यार से उसको संभालो बड़े आराम से, तो बाबा जोड़ा रहेगा, बाबा प्यार से आपके साथ रहेगा, उसको अपने साथ लेकर जाओ। मैं तो रोज, कल भी जब शाम को निकल रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो घर से बाहर निकलते तो बहुत सुंदर सा बाबा का चित्र, एक बाबा का लगा हुआ है, तो उसके आगे मैं रुक जाता हूँ और मैं हमेशा बाबा से बोलता हूँ कि बाबा तुम यहाँ लटके लटके क्या करोगे, तुम भी अकेले बैठे हो, मैं भी अकेला जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ ही चलते हैं। तो वो भी कहता है तू बात तो सही कह रहा है, चल दोनों साथ ही चलते हैं। तो बाबा को साथ ले लेंगे, भगवान को साथ ले लेंगे, उनकी भी कंपनी रहेगी। कभी दोस्त की तरह बातें करो, कभी मित्र की तरह बातें करो, कभी अपने सखा की तरह बातें करो, कैसी भी बात करना चाहो करो आराम से। बाबा को भी कंपनी है, आपको भी कंपनी है, सफर भी बहुत बढ़िया कटता है, एंजॉयमेंट भी होता है, और सर्वशक्तिमान बैठा है तो कहते ना भाई वो भगवान बैठा, वो देख लेगा, हमें चिंता की बात नहीं है, तो बड़ा आनंद आता है। तो रोज कंबाइंड स्वरूप में जाओ, रोज रोज घर से बाहर निकलते हुए, मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूं, और कई बार बड़ी तेजी से मैंने कदम बाहर रखा, तो कदम बाहर रखूंगा फट दरवाजा खोलूंगा, सॉरी बाबा चलो आपको लेने के लिए आया हूं दोबारा, बड़ा आनंद आएगा आपको। ऐसे ऐसे कुछ खेल पाल से करते रहो, सिंपल एक्सरसाइजेस। ब्राह्मण लाइफ इज ऑल अबाउट जॉय। नई नई टेक्निक्स निकालना अपने लिए, नई नई बातें अपने लिए निकालना, यही तो आनंद है, यही तो पिकनिक है ना। तो ऐसे जब आप करोगे तो बैलेंस आता चला जाएगा, वो बाबा को भी आदत पड़ जाएगी, वो भी कहेगा रुक जा भाई मैं भी आ रहा हूं, रोज चलते हैं साथ में, मैं भी। और वो तो हजार बुझादारी है, वो आपको हरेक को इंडिविजुअल लेवल पर उतना ही संतुष्ट और संपन्न कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति है। एक दिन अभ्यास करके देखो, यहीं पर ही बैठे ना हम लोग, तो यहीं पर ही बैठे बैठे एक दिन बाबा के पास जाओ, तो बाबा के कमरे में जाना कि बाबा बहुत आनंद आया। अब कमरे में गए तो बाबा को कहो चलो बाबा मेरे साथ ही, आप साथ में चलो, खोलो मेरे साथ ही, तो बाबा प्यार से आपके साथ अव्यक्त रूप में चल लेगा, हर जगह आपको बड़ा सुंदर अनुभव कराएगा। तो ये बैलेंस जब हम रखते हैं तो हमारे चेहरे चलन के द्वारा बड़ी सहज रूप से सेवा होती चली जाएगी, मुश्किल नहीं लगेगा। चोजन बनो आप, इस विश्व की मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हो, अति विशेष आत्माएं हो, सफलता स्वरूप आत्माएं हो, निर्विघ्न आत्माएं हो, निर्बोझ आत्माएं हो, निर्व्यर्थ आत्माएं हो, निरंतर महादानी आत्माएं हो, निश्चिंत आत्माएं हो, निश्चय बुद्धि आत्माएं हो। कितनी श्रेष्ठ सुमान भगवान ने दिए हैं, और स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा आपको ये कह रहा है, कोई गुरु नहीं कह रहा, भगवान आपकर कह रहा है कि बच्चे तुम इतने शक्तिशाली हो, अवतरित फरिश्ता हो। और हम कहें नहीं बाबा, मुश्किल लगता है, हो नहीं पाता है, दो चार क्लासेस और कर लें, उसके बाद वही स्मृतियां हमको कोई बताएं। बाबा कहता है रोज मैं तुम्हें ये स्मृतियां देता हूं, केवल उसका अनुभव अपने जीवन में करते चले जाओ। तो दूसरा बैलेंस है तपस्या और सेवा का बैलेंस, है ना। तपस्या में भी विभिन्न विभिन्न स्वरूप अनुभव करो। जब हम योग लगा रहे हैं, तपस्या लग रहे हैं, तपस्या तो रोज सवेरे ऐसा नहीं बैठे कि मैं आत्मा हूं, बाबा परमात्मा है, है? उसी में हम फाइट करते रहे और थोड़ी देर बाद हमारा हैंडपंप चलना चालू हो जाता है ना, सबको नींद, सबको हो जाता है, सबके साथ ये होता है कभी ना कभी। लेकिन बाबा कहते हैं वैरायटी रखो, कभी मेरे पास परम धाम में आ जाओ, कभी आपका आने का मन नहीं है तो बाबा को अपने पास साकार वतन में बुला लो, और कभी दोनों का ही मन नहीं है तो मिड पॉइंट में पिकनिक स्पॉट पर डिसाइड कर लो, सूक्ष्म में बाबा आधा रास्ता आप कवर करो, आधा मैं कवर करता हूं, वहीं पर ही हम लोग मिल लेंगे। तो अलग अलग प्रकार से व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग जॉय, आनंद, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको फाइट नहीं लगेगी। फिर भी कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कोई आते हैं, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। योग इज अबाउट जॉय, योग इज अबाउट हैप्पीनेस दैट यू क्रिएट। कितनी खुशी हम लोग आनंद अपने जीवन में क्रिएट करते हैं। योगा इज नॉट फाइट, राजयोग का जीवन लड़ाई नहीं है कि मैं आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा एक परमात्मा, इसी फाइट में हमारी लाइफ निकल जाए, नहीं। योग इज अबाउट संबंध, जब प्यार है तो संबंध ऑटोमेटिकली हम लोग लाइफ में क्रिएट करते हैं। तीसरा बैलेंस हमें कौन सा रखना है, बहुत सुंदर बैलेंस बाबा ने दिया है, वो बैलेंस है जिसके लिए राजू भाई ने बताया, स्पष्ट किया, मैं ज्यादा उसको एलैबोरेट नहीं करूंगा, वो है न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। 83 की मुरली के अंदर बाबा ने इसको बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया था, न्यारा और प्यारा। न्यारा होना है देहाभिमान से, तो बाबा ने कहा प्यारे भी सबके रहो। बाबा कहते हैं मैंने उससे तोड़ दिया अपना, उसमें आके मैंने उससे जोड़ लिया, मैं उससे उलझ गया। बाबा ने कहा ना तोड़ना है, ना जोड़ना है, ना उलझना है, केवल ब्राह्मण लाइफ में निभाना है। तभी कर्म बंधन को बाबा वर्ड क्या बोलते हैं, कर्म संबंध, निभाना है हमको, केवल प्यार से निभाओ। अलग अलग प्रकार की आत्माएं आएंगी, अलग अलग प्रकार का चैलेंजेस लेकर आएंगी, आपके अनुसार नहीं होंगी, आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आएंगी। हर आत्मा आपके लिए एक पेपर बनकर आएगी, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव पेपर लेकर आएगी, लेकिन मेरी स्थिति बड़ी आराम खुशनुमा। फिर भी कभी कभी ऊपर आएगा, लेकिन स्मृति लाओ कि मैं तो न्यारी प्यारी आत्मा हूं, इसको भी मुझे दुआएं देनी है, इन आत्माओं को भी मुझे बड़ा श्रेष्ठ प्यार से, मेरा स्वरूप है, मेरा वो देवताई स्वरूप है, मैं पूजनीय आत्मा हूं, इनको भी मेरे स्वरूप के द्वारा सुख शांति पवित्रता शीतलता प्यार आनंद सबका अनुभव हो, रहम की भावना अनुभव हो। तो ऐसा न्यारा और प्यारा हमको बनके रहना है। तो न्यारा होना है अपने देह अभिमान से। तो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ जब हम करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो हर आत्मा को प्राप्ति अनुभव, वो दुआएं देगी आपको कि इनके प्रति, इनके पास जब भी हम आते हैं ना, एक ऐसे घेरे के अंदर आ जाते हैं जो अट्रैक्शन, कोई दिव्य फोर्स हमको खींच रहा है। एक व्यक्ति नहीं खींच रहा, लेकिन बाबा की शक्ति खींच रही है, बाबा की शक्ति। रोज बाबा को दे दो, परमात्मिक शक्ति है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ना? तो प्यार से बोलो कि बाबा का ज्ञान बाबा करा रहा है, बाबा की शिक्षाएं हैं, भू 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 करते रहो। कोई नहीं भी सुन रहा तो भी प्यार से उसको देते जाओ। बाबा कहता है कई आत्माओं को, मैं अपने जीवन से आपको बताता हूं, ब्राह्मण लाइफ में होने के बाद भी, आपको मैं सच में अपनी दिल की बात बताता हूं, कभी ना भी एक्नॉलेज करें कि ब्राह्मण लाइफ में होने के बाद भी अनेकों अनेक आत्माओं के प्रति क्रोध आना, अनेकों अनेक आत्माओं के प्रति इरिटेशन होना, ईर्ष्या होना, घृणा होना, कॉम्पिटिशन होना, क्रिटिसाइज करना, ये भावनाएं मेरे अपने मन में भी आती थी, पावरफुल तरीके से आती थी, 10-10, 15-15 साल के बाद भी आती थी। रोज मुरली सुनना, नियम रूप से सब कुछ करना, लेकिन फिर भी ये भावनाएं मन को बार बार परेशान करती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना बार बार रखते हैं, 10-10 साल लगे, 5-5 साल लगे, लेकिन बाबा की वो भावनाओं को जब हमने कंसिस्टेंटली रखा, एक दिन ऐसा आया कि वो भी पिघलकर ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो गई। इतना श्रेष्ठ बाबा का ज्ञान है, कंसिस्टेंसी। तो रोज आत्मनिरीक्षण करते हुए कि क्या मैं परिवर्तन हो रहा हूं, गलती है, मिस्टेक हुआ कोई बात नहीं, गड़बड़ हुआ कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने बोला ना भाई साहब ने, कितना सुंदर बोला कि मिस्टेक हुई, मन में धारण किया तो उससे तो गलती वो एक, लेकिन आपने अपने मन के अंदर कीचड़ रखी तो आपकी गलती उससे 10 टाइम्स ज्यादा रजिस्टर हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने अपने मन को गंदा किया, दूसरा उस आत्मा के प्रति आपने नेगेटिव भावनाएं अपनी चलाई। बहुत सुंदर बाबा ने इसकी साइंस निकाली थी। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा पाप हमारा बन जाता है। तो बाबा ने कहा अपने मन को परिवर्तित करते जाओ, इतना श्रेष्ठ और पवित्र और शीतल मन, स्वच्छ मन, जैसे कोई आए तो परछाई की तरह वो देखे कि इनके जीवन से हमको बहुत श्रेष्ठ झलक दिखाई देती है, ऐसा मजेदार फर्स्ट क्लास बिल्कुल, जिसको दादी जानकी क्या कहती थी, सच्चाई, सफाई और सादगी, ये तीन हमारे ब्राह्मण क्वालिटी हमारे जीवन का ये ट्रेट्स है हमारे। तो न्यारा और प्यारा मन। चौथा बैलेंस जो आज ब्राह्मण लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है वो है साधन और साधना का बैलेंस। आज देखा जाता है कि साधन बढ़ते चले जा रहे हैं और साधनों के अंदर भी कभी कभी हम लोग उलझ जाते हैं, हम भी उलझ जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी, लेकिन इसके अंदर हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है अधिकतर ब्राह्मण आत्माओं के अंदर, कि मॉर्निंग में मुरली सुनेंगे, उसके बाद मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन होंगे। मैं देखता हूं मॉर्निंग अमृत वेले उठते हैं तो अमृत वेले के बाद ही मैसेजेस चालू जाएंगे, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी गुड नाइट, ऐसे करके अलग अलग मैसेज। अरे अमृत वेला, हैप्पी अमृत वेला क्या होता है? बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है। इसी प्रकार अलग अलग ग्रुप से अलग अलग क्लासेस आएंगी तो पूरा दिन उसी चीज को सुनते हुए हमारा मन थक जाता है। हर आत्मा की, हर मन की एक कैपेसिटी होती है चीज कैच करने की। तो कभी इधर ग्रुप, कभी उधर ग्रुप, कभी इस भट्टी के अंदर, कभी उस भट्टी के अंदर, पूरा दिन उसमें उलझे रहते हैं। घर का एनवायरमेंट भी हमारा विचलित होता है, हमारी मन की स्थिति भी स्टेबल नहीं हो जाती। और फिर बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मेरे पास कितने मैसेज रो जाते हैं कि भाई जी उन्होंने ऐसा कहा, इसका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, भाई जी उन्होंने इस बात को कहा कि इस तरह स्वर्ग आने वाला है, इस डेट को ये आने वाला है, इसका स्पष्टीकरण कर लीजिए। ये केवल प्रॉब्लम है हमारे मन का ओवर एनालिसिस। बाबा ने क्या कहा? केवल दो बातों का ध्यान रखो, मुझे एक बाबा की साकार मुरली रोज आत्मसात करनी है, उसका श्रवण करके मनन मंथन और मग्न अवस्था को पाना है, एक बाबा की अव्यक्त मुरली जरूर 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 पढ़नी है, उसका एक पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा नहीं भी पढ़ना है तो एक पैराग्राफ मुझे अव्यक्त मुरली का रात को या सवेरे उठकर जरूर पढ़ना है, और एक कोई भी क्लास जो आपको मर्यादाओं के अनुसार ठीक लगती है, बहनों से लेके इंस्ट्रक्शन, उसको आप सुनो। बस एक दिन के लिए इतनी डोज काफी है, उस डोज को सुन के आराम से अनुभव करो, बाबा के साथ विभिन्न विभिन्न संबंधों का अनुभव करो, योग का अनुभव करो। बैठने वाले योगी हैं क्या हम? एक घंटे का योग लगाया, 2 घंटे का योग लगाया, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए भी योग, प्यार से कर्म करते हुए भी योग, कुछ भी लिखते हुए भी लोग योग, खाना खाते हुए भी प्यार से वो योगी अवस्था रहे, ये सब बाबा कहता है, ये हमारे योग के अकाउंट में भी परसेंटेज में काउंट होता चला जाता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशंस करते हैं तो तब आप क्या योग लगा के जाते हैं या योग करते हैं वहां पे? तो मैं उनसे मुस्कुराते कहता हूं, मैंने कहा भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट टेबल पर लेटा हुआ है और मैं ऑपरेशन करने जाऊं और वहां जाकर मैं कहूं मैं आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हूं, बाबा भी परमात्मा है, वो मुझे शक्ति दे कि मैं आपका ऑपरेशन करूं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्यार से बाबा को कहते हैं कि करण करावन हार, इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके सब कुछ परफेक्ट कराएगा। वो स्थिति, योगी स्थिति बन जाती है हर कर्म के अंदर स्थिति। तो कोई भी बिजनेस करें, कोई भी कार्य करें, स्थिति बड़ी श्रेष्ठ बनाओ, स्मृति बड़ी श्रेष्ठ बनाओ। जब बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा को अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो कर्म कैसा होगा? योगी या कर्म योग होगा या नहीं होगा बताइए? होगा या नहीं होगा? नेचुरली हो जाएगा। कुछ भी खाना खा रहे हैं तो प्यार से बना रहे हैं, आराम से बना रहे हैं। अब कभी घर के अंदर कभी बहुत तेज गाने लगा लिए, टेलीविजन चल रहा है, कोई रेडियो चल रहा है, कुछ और चल रहा है और भोजन बन रहा है, ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। बड़े प्यार से बाबा की याद में शांति से भोजन बनाओ। जब हम भोजन खा रहे हैं तो बाबा की याद देखो। कभी कभी मैं मोबाइल ऑन रख के भी भोजन कर लेता हूं, या टेलीविजन भी चल रहा होगा, कभी कुछ ऐसी बात होगी तो हमारी सिस्टर हमारे माता रोक देंगे, भाई मोबाइल को साइलेंट रखो, भोजन करने का समय शांति से बाबा की याद में कहो। 24 घंटे में से 1440 मिनट में से 10-15 मिनट तो अपने लिए प्यार से भोजन के लिए निकाले ना, बाबा की याद में खाएं, बाबा को खिलाएं, ये बहुत श्रेष्ठ है। तो साधन हमारी साधना का आधार नहीं होना चाहिए कि म्यूजिक चलेगा तभी हम योग लगाएंगे, लाल लाइट होगी तभी हम योग लगाएंगे, चार लोग हमारे साथ बैठेंगे तभी हम योग लगाएंगे, जूम पे ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे तभी हम योग लगाएंगे। कई बार ये भी एडिक्शन बन जाता है, ये भी एक स्ट्रेस का रूप ले लेता है। सहज हुआ बहुत बढ़िया, सेवाओं के लिए माध्यम है बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन आधार नहीं बनाओ। अन्य आत्माओं को भी उसका निराधार बनाओ कि नहीं है बहुत बढ़िया, शांति से संकल्पों का, संकल्पों के अंदर रमण करना। ये यात्रा आपने मन की है, बाहर की यात्रा नहीं है, ये स्वयं मन के अंदर है। खो जाओ उस प्यार के अंदर, उसको संभालो। जब ऐसे प्यार से चलते हुए शांति से आज जाएंगे ना शाम को बाबा की पहाड़ी पे, तो बड़े प्यार से चलो बाबा आओ आपको साथ लेकर चल रहे हैं, सुकून का अनुभव, प्यार शांति का अनुभव, ऐसे अपने अंदर उसको अनुभव करते जाओ। तो साधनों को यूज करना ये हमारी सुविधा के लिए, बाबा ने हमारे लिए बनवाए हैं, लेकिन उसको कभी भी हमारे जीवन का साधना का आधार नहीं बनाना, उसको जुडिशियसली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी परीक्षा आ रही है आज, हमें भी इसको फेस करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लासेस में भी चूज, ज्यादा समय क्लास पर मुरलियों पर मंथन करके समय निकालो, जितना भी समय जिसको मिलता है। ओवर रीडिंग करेंगे तो कोई भी पॉइंट पे आप मंथन कभी भी करने की कैपेबिलिटी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए साधन और साधना का बैलेंस बहुत आवश्यक है। पांचवा बैलेंस जो बहुत जरूरी है, जो बहुत बहुत आवश्यक है, वो बैलेंस है हमारा सेवा के साथ साथ, स्थिति के साथ साथ, हमको सदा अपने जीवन के अंदर हमेशा हमेशा बाबा को साथ रखते हुए भोजन मर्यादाओं का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस रखना है, सदा एक्यूरेट बिल्कुल। कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का, जिसको बाबा कहते हैं भावना और विवेक का बैलेंस। आज अक्सर देखा गया है कि ब्राह्मण आत्माएं भावना के अंदर बह जाती है, एक्सेप्शनल भावना है, और जब हम ढेर सारा प्यार बाबा भावनाओं के ऊपर सदा समर्पित है, बाबा सदा जिसे कहते हैं दिलाराम है, बाबा को कभी बुद्धिराम नहीं कहा जाता, लेकिन भावनाओं के अंदर बहते हुए अपने विवेक को कभी भी समाप्त मत करो। विवेक युक्त भावना जब हमारी रहती है तो वो हमारी स्थिति को सदा सफल बनाती है, हमको दुआएं बनाती है। आज अक्सर देखा गया है ब्राह्मण परिवार के अंदर भी, ब्राह्मण फैमिलीज के अंदर भी एक माता या एक हस्बैंड चलते हैं या बच्चे चलते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान मार्ग में चलते हुए अपनी फैमिलीज के अंदर भी कन्फ्लिक्ट पैदा कर लेते हैं। और कन्फ्लिक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भावना विवेक युक्त नहीं होती है। तो बहुत आवश्यक है इस बैलेंस को बनाना। दादियों ने सदा इस बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अंडरलाइन कराया कि कैसे उन आत्माओं के साथ निभाना है, घर के अंदर भी प्यार से उन सब बातों को रखते हुए, उनके लिए भी शुभ भावना रखते हुए, अपनी मर्यादाओं को भी एक्यूरेट फॉलो करना है, भावनाओं को भी सम्मान देना है, लेकिन विवेक को नहीं खोना है। कभी कभी बच्चों का फोन आएगा कि मम्मी आप बदल जाते हो, ऐसे ऐसे बच्चे फोन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी पहले थी वो हमको समय देती हैं, अब तो सवेरे से लेकर शाम तक केवल योग लगाना है, केवल मुरली पढ़नी है, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है, उनके साथ उनको गाइडेंस देना, उनके साथ बात करना, वो समय नहीं है। तो ये है इम्बैलेंस क्रिएट करना, ये ज्ञान नहीं है, ये हम अपने परिवार का आधार समाप्त कर रहे हैं, ये हमको ब्लेसिंग्स नहीं देगा, ये हमारी लाइफ को ब्लिसफुल नहीं रखेगा। आप सोचो ना, हम कह रहे हैं मर्यादाओं पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी ब्लिस, हमारा जीवन का सुख और चैन अभी उड़ जाए तो हमारी ब्लिसफुल लाइफ समाप्त हो जाती है। इसलिए यथार्थ श्रेष्ठ आत्मा जो है वो सदा सदा अपने जीवन के अंदर भावना और विवेक का एक्यूरेट बैलेंस जरूर रखेगी, बाबा के साथ प्यार और उन आत्माओं के प्रति भी ढेर सारी शुभ भावनाएं, बच्चों को भी ये स्मृति देना, बच्चों को भी ये प्यार देना, बच्चों के लिए भी समय निकालना, परिवार के साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ इंजॉय करना, मर्यादाओं में रहते हुए उनके साथ जाना, घूमना, सब कुछ करना, और अपने चेहरे चलन के द्वारा उनको ये भी जीवन को परिवर्तित करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन उनकी भी ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं। कितने ऐसे परिवार यहां पर होंगे जिनके जिनके हस्बैंड या वाइफ अकेले चले, लेकिन उनके चरित्र, उनके जीवन के द्वारा भी धीरे धीरे वो सब एक होकर उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। तो ऐसा जीवन जब हम बनाते हैं, बैलेंस हम रखते हैं पांच प्रकार के, तो सर्व की दुआएं, सर्व की ब्लेसिंग्स हमको प्राप्त होती हैं। और जिस आत्मा के पास दुआएं हैं ना, तो बाबा ने बोला कठिन से कठिन परिस्थिति भी आएगी, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आएगी, लेकिन वो दुआओं का खजाना, वो दुआओं का खजाना उस मुश्किल से भी उस आत्मा को उड़ाकर, उसको बाहर निकालकर, उसको ब्लिस, उसको हल्केपन का, प्यार का अनुभव कराएगा, उसको हल्का अनुभव कराएगा। तो आज से जो आज है ना, कल जो है, मैं बहुत सुंदर एक बात हमेशा बोलता हूं और इस बात को लिखना कि टुमारो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कल आपके बाकी बचे हुए जीवन का पहला दिन होगा, तो उस जीवन को आप कितना सुंदर, कितना पवित्र, कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, वो हम सबकी अपनी चॉइस है। खुशियों से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, ब्राह्मण लाइफ ही माना खुशियां, आनंद, चैन से परिपूर्ण, चेहरे और चलन से, कार्य कर रहे हैं तो खुशी से कर रहे हैं, सफलता आनी ही है। भगवान ने कहा वो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम सफलता स्वरूप हो। तुम सफलता को दूर लेके जाते हो केवल अपने कमजोर संकल्पों के द्वारा, और जब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप निकालते हो तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे पास आती चली जाती है। अंत में केवल एक छोटी सी बात सुना के वाणी को विराम दूंगा और इस बात का हम सब अनुभव करेंगे कि जीवन तो हमारा चलता ही है। ऐसे ही एक महात्मा के पास बहुत सारे लोग गए, उसने उनको तपस्या करनी आरंभ कराई, तो तपस्या हो रही थी तभी वहां पे बहुत तेज भूकंप आ गया और भूकंप आया तो सब लोग भागने लगे, लेकिन वो महात्मा आराम से वहां पर बैठा रहा। तो उसका जजमान बोला कि भाई ये महात्मा यहां पर बैठा है, सब भूकंप से जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके साथ मैं भी रुक जाता हूं, इतनी श्रेष्ठ आत्मा के साथ प्राण भी जाए तो कोई बात नहीं। तो वो बैठ गया और जब भूकंप सेटल हुआ तो सभी लोग वापस आए और उसने अपना प्रवचन दोबारा आरंभ किया। उसने कहा कि महात्मा जी रुकिए, पहले मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। उसने कहा बोलो। उसने कहा जब भूकंप आया तो सब लोग भाग रहे थे लेकिन आप तो यहां पर बैठे रहे, आपको डर नहीं लग रहा था? तो उसने कहा नहीं बेटा, वो भी भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था। उसने कहा ऐसा कैसे? कहते वो लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अपने मन के अंदर भाग रहा था। तो उसने कहा स्पष्ट करो। तो उसने कहा देखो बेटा, जीवन में ज्ञान की सब बातें सुनते हुए भी लोग आज तीन नावों पर सदा सवार रहते हैं, प्राप्तियों के नाव पर, इच्छाओं की नाव पर, धन की नाव पर, संबंधों की नाव पर, इस नाव पर सदा सवार रहते हैं, लेकिन एक रास्ता हमारे अपने अंदर भी जाता है, उस रास्ते पे हमको स्वयं चलना पड़ता है। केवल परमात्मा की शिक्षाएं वही उसको प्रकाशित करती है, ज्ञान ही उसको प्रकाशित करता है। और जब उस यात्रा पर चलने का हम लक्ष्य उठाते हैं तो हमारा जीवन एनलाइटन बन जाता है, हम लाइट और माइट हाउस बन जाते हैं। तो रोज इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए, सब चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए, कुछ समय अपने अंदर की यात्रा के लिए बैठे बैठे जरूर निकालो, कुछ कुछ समय, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी। और ये एक एक घड़ी से ही हमारा घड़ा जो है ना वो भर जाएगा, वो छिलकेगा नहीं, वो हमेशा भरा हुआ रहेगा। और हमेशा कहते हैं ना, जैसे घड़े ने पूछा महात्मा से कि भाई मेरे में से तो पानी समाप्त हो जाता है, तो आप मुझे महात्मा जी कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि मेरे में से पानी समाप्त ही ना हो, मैं सदा ही भरा हुआ रहूं। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि तुम सागर के अंदर ही समाये हुए रहो, जब तुम सागर के अंदर ही समाये रहोगे तो तुम्हारे अंदर से कभी पानी निकलेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं हम भी रोज बाबा के प्यार, बाबा के सानिध्य में समाये हुए रहें। जब एक बार समा गए उस प्यार में तो क्या दुनिया, क्या चीजें, क्या वो सब कुछ ऑटोमेटिकली भगवान आपको प्राप्त कराएगा, आनंद कराएगा। जीवन का सुकून का अनुभव करो, खुशियों का अनुभव करो, ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव करो। तो क्लासेस होंगी लेकिन आज है परिवर्तन की घड़ी, ब्लिसफुल लाइफ की, प्रैक्टिकल अनुभव की घड़ी, औरों को भी ऐसी लाइफ अनुभव कराने की घड़ी। तैयार हैं? तैयार हैं? कौन कौन तैयार नहीं है ये बताओ पहले। अच्छा, कोई है जो तैयार नहीं है यहाँ पर? हाँ, कोई कोई है जो सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा। हाँ, इसकी भी मुरली बाबा ने 97 में चलाई थी, पढ़ लेना अक्टूबर में, गेंगे गेंगे होगा 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 होगा, बाबा गेंगे करता रहता। बाबा कहता छोड़ो ना बच्चे, इसको स्टैंप लगाओ ना दृढ़ संकल्प की, प्यार से। तो आप दृढ़ संकल्प की स्टैंप लगाएं, हम सब, मैं भी लगाऊंगा, आप भी लगाना, है ना, सब लगाएंगे, एंजॉय करेंगे, दुआएं देंगे, खुशियां देंगे, जैसी भी आत्मा है उसे एक्सेप्ट करो, इतना प्यार दो कि वो भी आपकी अपनी बनके उस रंग में रंग जाए, उसमें समा जाए, परमात्मिक रंग में सुकून मिल जाए। टाइम लगेगा लेकिन होना ही है। ओम शांति। चलिए प्यार से बाबा की याद में बैठते हैं, हल्की सी ट्यून चलेगी और हम केवल एक मिनट के अंदर प्यारे से पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सब आंखें खोलकर बैठना ताकि निद्रा देवी उड़ाकर ना लेकर जाए, वो बैठी हुई है यहां पर सेंध लगाकर। फिर हम भोजन करने जाएंगे, सभी अलर्ट होकर आंखें खोलकर प्यार से लड़ने नहीं जाएंगे, बाबा की याद में जाएंगे, हल्की सी म्यूजिक चलाएंगे और अपने आप को जैसे मंदिर के अंदर एक शक्तिशाली पवित्र मूर्ति होती है, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर अपने आप को स्थापित प्रकाशवान दिव्य शक्तिशाली परम पवित्र स्नेह से परिपूर्ण शांति की समावनता आनंद से परिपूर्ण अपने आप को एक चमकते हुए प्रकाश के रूप में देखो। शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। उड़ जाओ उस अनादि स्वरूप में, परम धाम में, बीज रूप अवस्था में। मैं आत्मा और मेरा प्यारा परमपिता शिव बाबा परमात्मा, देखो अपने प्रकाश को निश्चल विदाग अवस्था संपूर्ण शक्तिशाली प्रकाश। अब मैं आत्मा अवतरित होती हूं स्वर्ग के अंदर, मेरा पहला जन्म। मैं आत्मा एक प्रिंस के रूप में, एक प्रिंसेस के रूप में 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अद्भुत चमकीली ड्रेस, गोल्डन ड्रेस, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हीरों से सुसज्जित मेरा मुकुट, पवित्रता का ताज और हीरों का ताज। अनुभव करो, सैर करो अपने उस स्वर्ग की। सत्युग त्रेता के बाद मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में आती हूं, इष्ट देव और देवियों के रूप में, कहीं दुर्गा तो कहीं लक्ष्मी, कहीं गणेश तो कहीं कार्तिक। देखो अनेकों अनेक भक्त आज भी हमारे स्वरूप के द्वारा दुआओं का अनुभव, सुख का अनुभव कर रहे हैं। देते जाओ, सदा सदा के लिए देते जाओ। अब आ जाओ अपने ब्राह्मण स्वरूप में, सफेद वस्त्र परमात्मिक अवतरण, परमात्मा का साथ, मैं परम पवित्र श्रेष्ठ देवताओं से भी श्रेष्ठ भगवान का सानिध्य अनुभव करती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। अपने इसी स्वरूप से अपना प्रकाश का स्वरूप देखो, फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप, मेरा पांचवा स्वरूप, मेरा संपूर्ण स्वरूप, शरीर भी पवित्र प्रकाश और मैं आत्मा भी पवित्र। उड़ चलो सूक्ष्म वतन की ओर, एक फरिश्ते की उड़ान लेकर अनुभव करो सुंदर लाइट परमात्मिक सानिध्य का, और यही प्रकाश सुख शांति और पवित्रता का सरस गंगा की तरह संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देते जाओ। यही मुझ आत्मा के पांच स्वरूप है, स्वदर्शन चक्रधारी मैं आत्मा हूं। ओम शांति।